पहले पाठ में आया था कि स्फोट में वर्ण और पद की जो प्रतीति होती है वह आवश्यक है। जैसे संख्यांतर के ज्ञान के लिए पूर्व संख्या का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी तरह से पद का के ज्ञान के लिए वर्ण का ज्ञान आवश्यक है और वाक्य के ज्ञान के लिए पद का ज्ञान आवश्यक है। इस बात को उदाहरण के द्वारा 90 संख्या वाली कारिका में बताया गया है कि यथेव धर्षनेह पूर्वेर धूरात संतम से पिबा अन्यथा कृत विषयम अन्यथे वाद्य वस्यति। कहा कि जब हम दूर से किसी वस्तु को देखते हैं या अंधकार संतम से माने अंधकार है, अंधकार में किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए कि आगे वृक्ष है और दूर से जो है ना हम उस वृक्ष को जब देखते हैं तो जैसे लगता है कि कोई हाथी है, ऐसे ही अगर पास में देखते हैं और अंधकार रहता है तो उस समय में रज्जू होता है, रस्सी होती है, लेकिन उसमें हम सर्प समझते हैं कि ये सर्प है। तो अंधकार में जैसे हम रज्जू को सर्प समझते हैं, दूर से वृक्ष को देखने पर जैसे हम वृक्ष को हाथी समझते हैं, और जब दूर से तो हाथी समझते हैं, जब पास जाते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो वृक्ष है। ऐसे ही अंधकार में जब हम रज्जु को सर्प समझते हैं, फिर आलोक जब आता है, प्रकाश जब आता है, तो हम समझ जाते हैं कि अरे ये तो सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है। ठीक यही वाली स्थिति वर्ण पद वाक्य स्फोट के ज्ञान में भी हुआ करती है। कैसे? तो जब तक स्फोट का ज्ञान नहीं हुआ, अखंड स्फोट का ज्ञान, तब तक तो प्रतीत होता रहता है कि यह वर्ण है, हैं, यह वर्णों का समूह पद है। और जब स्फोट का ज्ञान हो जाता है तो कहते अरे हम तो बेकार ही समझ रहे थे, हम तो जो है ना कुछ और ही समझ रहे थे, यह तो स्फोट है, यह तो अखंड है, यह तो एक है, इसमें तो कुछ और है ही नहीं। यही बात इस कारिका में बताई गई यथेव दर्शनेह पूर्वेह दूरात, माने दूरात माने दूर से, दर्शनेह पहले पूर्वेह दर्शनेह, दूर से जब हम दर्शन करते हैं किसी चीज को देखते हैं तो पूर्वेह माने पूर्व दर्शन में, पहले माने देखने पर जो है दूर से जब देखते हैं तो पूर्व सबसे पहले उसमें अन्यथा कृत्य विषयम, विषय जो है वो अन्यथा कृत विषय जो है उसका ज्ञान होता है। और जब वही पास में आ जाते हैं तो अन्यथा एव अध्यवस्यति, फिर जो है अन्यथा का ही अध्यवसाय होता है, अन्यथा का ही निश्चय होता, अध्यवस्यति मतलब निश्चिन होती, निर्णयति। तो दूर से देखने पर अन्यथा विषय का ज्ञान होता है और पास में देखने पर अन्यथा जो है विषय का ज्ञान होता है। इसी तरह से संतम से अंधकार में देखने पर अन्यथा विषय का ज्ञान होता है और आलोक होने पर, प्रकाश होने पर अन्यथा विषय का ज्ञान होता है। तो जैसे दूर से और पास से देखने पर अन्यथा ज्ञान होना, अंधकार और आलोक में देखने पर अन्यथा ज्ञान होना होता है, उसी तरह से स्फोट से पहले वर्ण और पद का ज्ञान होता रहता है, अन्यथा ज्ञान होता है, और जब स्फोट का ज्ञान हो जाता है तो अन्यथा ज्ञान होता है। उस समय में लगता है कि अरे ये वर्ण पद तो बेकार है, ये निरर्थक है, वस्तुतः जो है वह स्फोट ही है, स्फोट की ही सत्ता है। अब 91वीं कारिका को देखें। व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्ति हेतुभिः भावावग्रह रूपेण पूर्वं बुद्धि प्रवर्तते। वही जो 90 कारिका में बताया गया था उसी बात को वाक्य वर्ण पद में मिला करके कह रहे हैं। ऐसी ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी पंक्ति पर देखिए, व्यज्यमाने तथा वाक्ये, तथा माने जैसे दूर और समीप में देखने पर, अंधकार और प्रकाश में देखने पर पहले अन्यथा ज्ञान होता है और बाद में अन्यथा ज्ञान होता है, तथा उसी तरह से वाक्य व्यज्यमाने, वाक्य जब व्यज्यमान हो जाता है, वाक्य स्फुट जब प्रकाशित हो जाता है तो वाक्य अभिव्यक्ति हेतु भी, वाक्य अभिव्यक्ति का जो हेतु है, जो कारण है, उस उन कारणों में भावावग्रह रूपेण, भाग का जो अवग्रह है, भाग मतलब वर्ण पदादि जो अवयव हैं, उसका जो अवग्रह मतलब अवग्रह आभास या ज्ञानम। तो वाक्य की अभिव्यक्ति में जो हेतु है, कौन हेतु है, तो भाग है हेतु। कौन सा भाग? वर्ण भाग, पद भाग, ये जो भाग है इसका जो अवग्रह होता है, इसका जो ज्ञान होता है वह पूर्वम बुद्धि प्रवर्तते, वो बुद्धि में पूर्व में आता है, बाद में जो है वह केवल अखंड वाक्य स्फोट का ही जो है ज्ञान रहता है, रह जाता है, और परपूर्व में भावावग्रह रूप ज्ञान रहता है, माने वर्ण भाग का और पद भाग का ज्ञान रहता है। तो वाक्य भज्यमाने तथा वाक्य वाक्याभिव्यक्ति हेतु भी भावावग्रह रूपेण पूर्वम बुद्धि प्रवर्तते, ऐसे ये सरल है कार्य का कि वाक्य जब भज्यमान हो जाता है, वाक्य जब प्रकाशित हो जाता है तब जाकर के केवल वाक्य का ही ज्ञान रह जाता है, और उससे पूर्व में वाक्य के प्रकाशित होने से पूर्व में वाक्य की अभिव्यक्ति का जो हेतु है वर्ण पद, उस वर्ण पद का ज्ञान बुद्धि में रहा करता है। तो वस्तुतः वाक्य जो है वह निरवयव है, और उसके अवयव का जो ज्ञान होता है वर्ण पद आदि, वर्ण पद का वह ज्ञान वो अन्यथा ज्ञान रहता है, जैसे हम प्रकाश में और प्रकाशाभाव में, दूर में और समीप में जिस तरह से अन्यथा ज्ञान होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी अन्यथा ज्ञान होता है। अब 92 संख्या की कारिका को देखें। यथानुपूर्वी नियमो विकारे क्षीर बीजयो हो तथेव प्रतिपत्रीनाम नियतो बुद्धि सुक्रमः। यहाँ बहुत बढ़िया जो है उदाहरण दिया गया क्षीर का और बीज का। क्षीर कहते हैं दूध को, और बीज आप जानते ही हैं, जैसे ये जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका जो बीज होता है, इन दोनों का उदाहरण दिया है। क्यों? तो बुद्धि में किस तरह से क्रम होता है, जैसे बुद्धि में क्या हुआ, पूर्व में तो वर्ण का अवग्रह हुआ, फिर पद का अवग्रह हुआ, फिर जाकर के वाक्य का अवग्रह हुआ, पहले सखंड का अवग्रह हुआ, बाद में अखंड का अवग्रह हुआ, ये क्रम होता है ना, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसी को चीज को समझाने के लिए क्षीर और बीज का उदाहरण दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूध है, दूध का विकार क्या है? दही है। तो दूध से जो दही बनता है, विकार मतलब उत्पन्न होने वाला जो होता है ना, किसी चीज से जो उत्पन्न हो उसको हम विकार कहते हैं। तो क्षीर का विकार क्या है? क्षीर से उत्पन्न होने वाला क्या है? तो दही है। तो दूध से जो दही बनता है वो अचानक नहीं बन जाता है, अभी दूध है अभी तुरंत जो है दही बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले क्या होता है कि क्षीर वाली अवस्था रहती है, माने द्रव द्रव्य रहता है, माने वह पिघला हुआ नहीं कह सकते हैं, मतलब छिला एक जगह से दूसरी जगह सरकने वाला, जैसे पानी होता है तरल जिसको कहते हो, उसी को द्रव द्रव्य कहते हैं। तो क्षीर की अवस्था जो है ना वो एक पहले सबसे पहले तरल अवस्था होती है, पानी की तरह होता है। उसके बाद जब जावन उसमें देते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है वह उसकी तरलता कम होती है, वह थोड़ा सा कठिन होना शुरू होता है, उसके बाद फिर अधिक और कठिन होता है, फिर जब पूरा कठिन हो जाता है, पूरा दृढ़ हो जाता है, तब वह दही बनता है। ये इसका क्रम है कि पहले पानी की तरह तरल होना, उसके बाद थोड़ा सा जो है ना उसमें जमना शुरू होगा, थोड़ा जमेगा और जमेगा और जमेगा, जब पूरा जम जाएगा तब वह दही कहलाएगा। इस तरह से एक क्रम है दूध से दही बनने का। ऐसे ही बीज होता है, बीज में क्या है कि पहले बीज जो है ना वह फूटेगा, पहले बीज रहेगा, फिर बीज फूटेगा, फिर उसमें अंकुर उत्पन्न होगा, फिर अंकुर उसमें से तना आएंगे, पत्ते आएंगे, फल आएंगे, इस तरह से एक क्रम है। अचानक से बीज से तुरंत जो है ना एक विशाल पेड़ नहीं बन जाता है, अचानक से दूध से तुरंत दही नहीं बन जाता है, उसका एक उसकी एक अनुपूर्वी का नियम है, माने क्रमिकता का एक नियम है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। इसी तरह से बुद्धि में भी जो है ये क्रम होता है कि पहले ध्वनि का श्रवण होगा, फिर वर्ण का ज्ञान होगा, फिर पद का ज्ञान होगा, उसके बाद वाक्य का ज्ञान होगा। अब कारिका को देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। यथा अनुपूर्वी नियम, अनुपूर्वी माने क्रम, जैसे अनुपूर्वी का नियम होता है, क्रम का क्रमिकता का नियम होता है, किसमें? विकारे क्षीर बीजो, क्षीरस्य विकारे बीजस्य च विकारे, क्षीर के विकार में माने दही में और बीज के विकार में माने वृक्ष में, जैसे आनुपूर्वी का नियम होता है, क्रमिकता का नियम होता है, आनुपूर्वी माने क्रमिकता, तो क्रमिकता का जैसे नियम होता है, तथैव प्रतिपत्री नाम, उसी तरह से प्रतिपत्री नाम माने ज्ञात्री नाम, बुद्धि नाम, जो ज्ञाता होते हैं, जो बुद्धा होते हैं, उनकी बुद्धि में भी नियतो बुद्धि सुक्रम, उनकी बुद्धि में भी यह क्रम जो है नियत होता है, क्षीर और बीज के विकार की तरह। अब 93 संख्या की कारिका देखते हैं। भागवत्सु अपि तेसु एवं रूप भेदो ध्वने क्रमात निर्भागेशु अपि उपायो वा भाग भेद प्रकल्पनम्। ये सब बात आप जानते हैं, फिर भी किसी भी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए बार बार उसको जो है ना बताया जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर ये कहा गया कि अब जैसे देखिए एक नदी शब्द है, तो नदी शब्द जो है चार वर्ण हैं इसमें, नौ अ द ई, और ये जो चार वर्ण हैं ये अवयव हो गए अलग अलग, इन अवयवों का जो समुदाय है वह है कौन, पद, नदी पद। अब यहाँ पर जो है ना दो तरह का मत होगा, एक कहेंगे क्या कि नौ अ द ई इन चार अवयवों से एक जो है नदी पद हुआ, और दूसरा कहेंगे कि नहीं, ये नौ अ द ई जो है ये तो इसकी कोई अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है, ये नौ अ द ई केवल जो है ना नदी को बताने के लिए है, ये नौ अ द ई का बोध नहीं होता है, नौ अ द ई से नदी का बोध होता है। और दूसरा वाला कहेगा कि नदी कोई अलग चीज है ही नहीं, नदी जो है ना ये नौ अ द ई का ही समुदाय है। इसी चीज को यहाँ कहते हैं कि भागवत्सु अपि तेषु, भाग से युक्त, भाग माने अवयव, जैसे मैंने नदी में अभी उदाहरण बताया कि नौ द नौ अ द ई ये जो है ना नदी का भाग है, अवयव है। तो भागवत्सु अपि तेषु, तेषु माने पदेषु वाक्येषु च, पद में और वाक्य में भागवत्ता होती है, भाग से युक्तता होती है, उसमें भाग जो है ना अवयव होता है। एवं रूप भेदो ध्वने क्रमात्, इस तरह से जो रूप भेद का ज्ञान होता है, स्वरूप भेद का ज्ञान होता है, स्वरूप भेद अर्थात वर्ण भेद का ज्ञान, पद भेद का ज्ञान जो होता है वह ध्वने क्रमात्, वह ध्वनि की क्रमिकता के कारण जो है उसमें ज्ञान होता है। निर्भागेषु, वस्तुतः वह जो पद है वह निर्भाग है, वाक्य जो है वह निर्भाग है, निर्भाग है मतलब अवयव रहित है, निरवयव है, तो वस्तुतः पद और वाक्य जो है निर्भाग है, फिर भी भागवान जो है प्रतीत होता है, क्यों कि ध्वने क्रमात्, ध्वनि में क्रमिकता होने के कारण, पूर्व पर ध्वनि होने के कारण निर्भाग पद और वाक्य में भी भाग की प्रतीति होती है। वह जो ध्वनि है वह उपाय है, वह उपाय है, उपाय है मतलब कारण है, किसमें, निर्भाग पद और निर्भाग वाक्य के ज्ञान में वह ध्वनि उपाय है, कारण है। भाग भेद प्रकल्पनम, और उस ध्वनि में जो भाग भेद है, अवयव भेद है, उसी की कल्पना जो है निर्भाग स्फोट में की जाती है। वस्तुतः वह भाग भेद जो है वह ध्वनि की है, वह पद और वाक्य का वह भाग भेद नहीं है। अब 94वीं कारिका को देखें। अनेक व्यक्ति भिव्यंग्या जाति स्फोट इति स्मृता कैश्चित व्यक्त ये वास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिता। हम लोग शब्द को जो है ना नित्य मानते हैं, शब्द क्या है हमारे यहाँ, तो स्फोट है, और स्फोट क्या है, अखंड स्फोट है, तो अखंड स्फोट शब्द जो है उसको हम नित्य मानते हैं। कुछ आचार्य जो हैं, मतलब कुछ आचार्य नहीं, दर्शन कह लीजिए, जैसे मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, ये सब स्फोट को नहीं मानते हैं, लेकिन शब्द को नित्य मानते हैं। कौन से शब्द को, तो जाति, शब्द में रहने वाली जो जाति है उसको जो है ना वो लोग नित्य मानते हैं। हम लोग स्फोट को नित्य मानते हैं, और मीमांसा किसको मानते हैं, शब्द में रहने वाली जाति को नित्य मानते हैं। उन्हीं के मत को यहाँ पर बताया गया कि अनेक व्यक्ति अभिव्यंग्या जाति ही स्फोट इति स्मृता, कहा कि अनेक व्यक्तियों, यहाँ व्यक्ति का अर्थ कर लीजिए व्यंजक, कि अनेक व्यंजक के द्वारा जो अभिव्यंग्य जाति है, अभिव्यंग्य माने व्यंग्य कहिए या प्रकाश कहिए, व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या करना है व्यंजक या प्रकाशक, अभिव्यंग्य का क्या अर्थ करना है व्यंग्य अथवा प्रकाश्य। तो अनेक व्यंजकों के द्वारा जो व्यंजित होने वाली जाति है वही जाति सा जाति स्फोट इति स्मृता, उसी जाति को व्याकरण लोग स्फोट कहते हैं, ऐसा मीमांसकों का कहना है। जबकि हम जो है ना ऐसा कहते नहीं है, तो मीमांसक कहते हैं कि मतलब आप जो स्फोट कहते हो कि स्फोट नित्य है, वह वस्तुतः क्या है कि जाति ही नित्य, जाति नित्य होती है, स्फोट नाम की कोई अलग से चीज नहीं होती है, शब्द में रहने वाली जो जाति है वही जो है जाति नित्य है, ऐसा मीमांसकों का कहना है। अनेक व्यक्ति अभिव्यंग्या जाति, अब जैसे अनेकों गायों को देख करके गोत्व जाति जो है समझ में आती है, अनेक घटों को देखने पर घटत्व जाति समझ में आती है, उसी तरह से अनेक व्यक्तियों को देखने से उसमें रहने वाली जो है शब्दत्व जाति समझ में आती है, और वह जो शब्दत्व जाति है वही नित्य है। तो अनेक व्यक्ति अभिव्यंग्या जाति स्फोटित स्मृता, अनेक व्यंजकों के द्वारा जो अभिव्यंग्य जाति है प्रकाश जाति है वही जाति जो है वह नित्य है, वही जाति जो है स्फोट है। कैश्चित, कैश्चित माने मीमांसक, मीमांसकों के द्वारा ऐसा माना गया, व्यक्तयः एव अस्याः ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः, यहाँ भी व्यक्तयः का अर्थ कर लीजिए वर्ण व्यक्तयः, कि वर्ण व्यक्तियां जो हैं वही ध्वनित्वेन माने व्यंजकत्वेन प्रकल्पिताः, वर्ण व्यक्ति जो है वह ध्वनि के रूप में प्रकल्पित है अर्थात व्यंजक के रूप में प्रकल्पित है। मैंने बताया हुआ है आपको कि मीमांसक लोग जो है ना वर्णात्मक ध्वनि मानते हैं, और व्यक्तयः एव अस्याः का अर्थ करिए वर्ण व्यक्तयः एव अस्याः, वर्ण व्यक्ति जो है वही ध्वनित्वेन माने व्यंजकत्वेन प्रकल्पिताः, व्यंजक के रूप में शास्त्र में प्रकल्पित हैं माने स्वीकृत हैं। तो मीमांसकों के अनुसार स्फोट पृथक से कुछ नहीं होता, शब्द में रहने वाली जो जाति है वही स्फोट कहलाएगी, और वह जो जाति है वही नित्य है, और उस जाति का प्रकाशन कैसे होता है तो अनेक वर्ण व्यक्तियों के द्वारा उसका प्रकाशन होता है। तो पाठ आज यहीं स्थगित।